کریں ہمارے سمے سالن سیلن پرشتے 208 سب سے نیچے والا پرتا پیارا اس پرکار اس کتھن سے یہ پرتیفلت ہوا کہ यद्यपि सामान्य रूप से आत्मा अपने ज्ञानमय और अज्ञानमय सभी भावों का कर्ता कहा गया है, क्योंकि वे उसके ही भाव हैं, उसका ही परिणाम है। तथापि जब विशेष भेद करके देखते हैं तो ज्ञानी आत्मा ज्ञान भावों का कर्ता है और अज्ञानी आत्मा अज्ञान भावों का कर्ता है, क्योंकि सभी ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं पर अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में ही होते हैं। आपको कुछ ऐसा लगा कि इसमें कुछ नई बात कही है? इसमें ये कहा गया है कि कॉमन जब हम ये बात करेंगे कि आत्मा किस किन किन भावों का करता है, तो यही जवाब दिया जाएगा कि अपने ज्ञान भाव और अज्ञान भाव दोनों का करता है। और जब ये कहा जाएगा कि अपने ज्ञान भाव और अज्ञान भावों का कर्ता कौन है, तो यही कहा जाएगा कि आत्मा करता है। अभी अपन ने भेद नहीं किया ना ज्ञानी अज्ञानी का, तो सामान्य में तो सभी आ गए ना ज्ञानी और अज्ञानी, इसलिए हम भ्रमित ना हो जाएं कि हम इतना तो बार बार समझाया था कि हम कर्ता है ही नहीं, हम कर्ता है ही नहीं, तुम ज्ञानी नहीं हो तो नहीं हो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल ये है कि जब कॉमन आत्मा की बात हो रही तो जो ज्ञानी आत्मा के बारे में कमेंट्स है, अज्ञानी आत्मा के बारे में कमेंट्स है, वो सब लागू होंगे ना। जब सामान्य बात होगी तो सभी बात लागू होगी, ख्याल में है ना। जब हम पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो उसमें गुजरात राजस्थान सब एक साथ आ ही जाएंगे ना, है ना। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो गुजरात नहीं आएगा, गुजरात की बात करेंगे तो राजस्थान नहीं आएगा। अभी विदेशी लोग क्या कहते हैं कि भारत ने इतने पदक जीत लिए, क्या उन तो भारत में बोलते हैं। और फिर दूसरा कमेंट आया कि वहां पर राजस्थान ही हावी रहा। अभी राजस्थान ही हावी रहा क्यों? राजस्थान की अखबार है ना, राजस्थान पत्रिका है, तो वो तो राजस्थान के गवाह ना, वो तो ये देखे कि उसमें जी राजस्थान का एक भी नहीं होता स्वर्ण पदक जीतने में। तो भारत जीता खुशी तो होती, फिर भी भारत जीता ही लिखता रहता वो राजस्थान का क्या हुआ, राजस्थान ने एक भी नहीं जीता, ये बात शायद नहीं लिखता। खोल के लिखता तो कोई लिखता नहीं, ख्याल में ना। और फिर और बात आई, फिर जयपुर हावी जयपुर सूत्रों में जयपुर हावी, अब ये कहां से आ गया समझिया। तो ऐसा भेद अभेद का कथन होता रहता है, तो अपने चित्त को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, उसको बारीकी से देखना चाहिए कि उसकी अपेक्षा क्या है। वैसे तो समझदार लोग बहुत समझदारी से ही भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे लगा ना आत्मा अपने सभी भावों का करता है, तो आत्मा कहा ना और सभी भाव कहा, और जब वो बात करेंगे तो वहां कहेंगे ज्ञानी, फिर ज्ञान भावों का अज्ञानी अज्ञान भाव, हम भेद नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त तुमने आत्मा बोला था और अभी ज्ञानी बोला है, ये भेद नहीं कर पाते ना, तो हमें लगता है एक मिनट में ऐसा कहते हैं और एक मिनट में ऐसा कहते हैं। अब कभी कभी क्योंकि ये बोलना कोई एक आदमी के हाथ में नहीं है ना, लिखना भी नहीं है, तो बोलने में और लिखने में भी कुछ अस्पष्टता रह सकती है, क्या तब भी हमें अपना विवेक जागृत करके उस सही बात समझने की हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे में जो अज्ञान रह जाएगा उसका पूरी तरह फल हमको ही भोगना पड़ेगा। वो उसने स्पष्ट नहीं बोला था कि उसने स्पष्ट नहीं लिखा था, इससे ये जवाब हमारा कोई सुनेगा नहीं वस्तु के स्वरूप में। अग्नि पर तुम हाथ रखोगे तो हमें किसी ने बताया नहीं था कि अग्नि पर हाथ रखोगे तो जल जाएंगे, ये बात अग्नि तुम्हारी सुनेगी नहीं, वो तो तुम्हें जलाएगी ही। क्यों? कि हम कह नहीं पाए थे अग्नि से, इसलिए हम कह देंगे कि अग्नि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं रखता हूं कि मुझे जलाना नहीं। कि नहीं, तुम चाहे कह दो चाहे नहीं कहो, वो अग्नि कोई पक्षपात करने वाली नहीं है, यानी वस्तु के स्वरूप में कहीं कोई माफी नहीं है। और इसमें तो माफी है ही नहीं कि हमें किसी ने बताया नहीं था, ये तो बहुत ही स्थूल है, क्योंकि तेरी जिम्मेवारी थी वो समझने की, ख्याल में है ना। कदाचित तो कोई ऐसा कहे मैंने पर डालने के लिए तो वो एक अलग बात है, ख्याल में है ना। लेकिन वो एक कहेंगे निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कह दिया होगा, लेकिन उससे किसी भी दृष्टि से, जैसे कि आपने अभी आपकी परीक्षा हुई कि कहा शांति जी ने अन्ना जी ने किसी ने भी जो पढ़ाया कि उसमें हम पेपर देंगे और तुम परीक्षा दो, तो उसमें आप कह सकते हो साहब कि एक जो प्रश्न आपने दिया है जो अपने अभी कोर्स में हुआ नहीं, कह सकते हो, और वो शायद कंसिडरेशन भी करें, कैसा था ये प्रश्न हमने ध्यान नहीं दिया और आ गया है तो इसे छोड़ देते हैं चलो। लेकिन बोर्ड वाले करेंगे कंसिडरेशन, वहां आप बता देंगे कैसा कि हमने इतना हमें शांति जी ने नहीं पढ़ाया था कि हमने जी ने पढ़ाया नहीं था, है वहां तो कोई नहीं सुनेगा ना आपकी, उसका दंड तो वे अध्यापक को तो नहीं देंगे ना। जो सिलेबस में कोर्स है उसकी परीक्षा होगी, पेपर उसका दिया जाएगा और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ख्याल में ना, वहां कोई कंसीडरेशन नहीं हो सकता ना। जब यहां आपको डांटे पीते हैं तो उस वक्त आप कह दो कि साहब ऐसा हो गया था, हमें पढ़ाया ही नहीं गया था यहां, लेकिन उससे नंबर थोड़ी बढ़ जाएंगे, तो तुम्हारी दांत थोड़ी कम पड़े और वो तुम्हारी कोटे की दांत उस अध्यापक को पड़ जाए क्यों? लेकिन वो नंबर तो तुम्हारे ही कम होंगे, अध्यापक के कम नहीं होंगे ना। तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं भी अज्ञान को माफी नहीं है, एक पॉइंट। और दूसरा, तो हम पहले ही कह दिया कि एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है, है? तो अब तो अपने अध्यात्म के पढ़ने के बाद तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। लौकिक दृष्टि से थोड़ा बहुत हम कुछ उत्तरदायित्व का कहते ना, कौन इसका उत्तरदायी है, है? ये एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बस ने तीन लड़के कुचल दिए, तो इसका उत्तरदायी कौन है, क्यों? इसका उत्तरदायित्व नक्की करना चाहिए। उत्तरदायित्व नक्की करने वाले तो खासकर जो अखबार वाले तो मालूम कितने कितने करेंगे, तो ड्राइवर तो है ही, बस है तो जिसकी वो बस है वो है, समझा ही ना। फिर वो पुलिस की व्यवस्था है, उसने कंट्रोल नहीं किया वो है, फिर सड़क में गड्ढे हैं वो है, फिर बरसात ज्यादा हुई तो बरसात है, फिर भी गवर्नमेंट को करना चाहिए तो म्यूनिसिपैलिटी है, क्यों? फिर उसके म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर हैं, फिर अपन कहेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट जिम्मेवार है, और अंत में विदेशी लोग आएंगे तो वे कहेंगे भारत कुछ, भारत में कुछ नहीं करता, केंद्र की गवर्नमेंट को ही दोष देंगे। उसमें इतनी जगह उसके निमित्त की अपेक्षा से दोष मरे जा सकते हैं और मरे जाएंगे टीवी पर अखबारों पर सब में, लेकिन वो उनमें से मरेगा कोई नहीं, वो मरा वो ही है जो बस के नीचे आया है, क्या क्या वो तो जो जिसका जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुझे अपने संभल के चलना चाहिए, तुझे ये सब पता है कि सड़क में गड्ढे हैं, ये फलानी बसें हैं बहुत गैर जिम्मेवारी से चलती हैं, अखबार वालों ने भी खूब सावधान किया है, और नहीं भी किया हो तो तेरे क्या फर्क पड़ेगा, यानी अब दंड हमको ही मिलेगा असली, समझ गया ना। इसलिए हम पूरी जिम्मेवारी हमारी है, पूरी सावधानी हमें हमारी रखनी पड़ेगी। सारे देश में हम कहीं भी जाएं, हम बस के नीचे आगे मरना जाएं, ये दूसरों पर जिम्मेवारी टाल कर और अठार से सड़क के बीच में चलें, हैं? तो उससे कोई माफी आपको मिलने वाली नहीं है। ऐसे तो निमित्त तो कितने हो गए बोलिए, गलती निकालने के लिए निमित्त की तरफ दृष्टि डालेंगे तो कितने निमित्त हो गए, लेकिन सजा तो उपादान को मिली ना। इसलिए कहते हैं असली कारण भी उपादान है और असली कार्य भी उपादान में हुआ है। ये जैन दर्शन का कितना महान सिद्धांत है। तो ये जो नए की बारीकियां हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेंगी, नहीं समझेंगे तो कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है। अभी जैसे ये आया उसने, अभी शांति जी समझा रहे थे कि भाई हल्दी और चूना मिलते ही नहीं है परम शुद्ध निश्चय में से। अब हल्दी चूना मिलने से तो लाल रंग हुआ है, तो मिलते ही नहीं तो लाल रंग हुआ ही नहीं, क्या हमें तो दिख रहा है, दिख रहा हो क्या? ऐसे राग देश हुए ही नहीं, क्यों? कि वो ऐसा मिलान होता ही नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये दोना पट्टी है, नहीं नहीं लगता है कि मिले ही नहीं है। अब वास्तव में हमारा नए ज्ञान कमजोर है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि परम शुद्ध निश्चय नए विषय का संयोग उसका विषय नहीं है। आप समझे ना, वो विषय बटे हुए हैं ना, तो संयोग को देखना जिस नए का विषय है वो देखेगा और वो बताएगा। अरे परम शुद्ध निश्चय नए का विषय तो सारे संयोगों से भिन्न आत्मा को देखना है और अपने विकारों से भी भिन्न आत्मा को देखना है। आप समझ गए ना, संयोगी भावों से भी भिन्न आत्मा को देखना है। तो मतलब वो हुआ ही नहीं, मिले ही नहीं, माने वो नए मिली हुई चीज को देखता ही नहीं। यदि एक्सीडेंट हो गया है तो वो गुंडा था, अपराधी था, हत्यारा था, हत्या करके भाग रहा था, ये सब पुलिस का काम है, अदालत का काम है, डॉक्टर का काम तो ये है कि उसके अस्पताल में केस आए तो पूरी ईमानदारी से उसका इलाज करे जो भी संभव हो, बढ़िया से बढ़िया। क्यों? वो कहे ये डाकू है, बदमाश है, हत्यारा है, इससे उसे कुछ मतलब नहीं। आप ठीक हो जाए तो आप ले जाके जो भी करना हो उस फांसी पे चला देंगे, हम तो ठीक करेंगे। अच्छा न्याय है कि हम मर गए थे, मरते हुए पहले बचाएंगे, उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे और फिर उसे फांसी पे चलाएंगे। यदि वो मर जाता तो हम फांसी पे किसको चढ़ाते? अब वो बहुत अटपटा लग रहा होगा ये, लेकिन मैं पूछता हूं इतने आतंकवादियों ने बम्बई पे हमला किया, अब उसमें जो मर गए उन पर तो केस अपन चला नहीं सकते, और जो भाग गए जिन्हें अपन पकड़ नहीं पाए, जिनके विरुद्ध हमें कोई सबूत नहीं मिले, उन पर भी कुछ नहीं कर सकते। यदि वो एक नहीं पकड़ा जाता कसाब तो किसी पे ही कुछ नहीं होता, और एक पकड़ा गया है तो उस पर तो जो भी हमारी कानून की व्यवस्था है, न्याय है, उसके अनुसार जो होगा सो होगा। आपकी ख्याल में आई ना, तो वो कहते हैं तो वो पकड़ना तो नहीं, अब उसे अस्पताल में भेजेंगे, बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर इलाज तो वैसे ही करेगा ना, बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए ना नैतिकता से, कि डॉक्टर कहेगा कैसे ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे, फांसी पे चढ़ाना पड़ेगा, और फिर इतने कहते राष्ट्रपति से माफी मंगवा लेंगे तो आजीवन कारावास में बदल देगा, ये साला मरेगा ही नहीं, मेरे कब्जे में आ गया है, एक जहर का इंजेक्शन दे देता हूं। ऐसा साफ बोलो, और ऐसा वो कर दे और बाद में सिद्ध हो जाए तो डॉक्टर फांसी पे चढ़ेगा उसकी जगह से। अब वो कहते डॉक्टर को देखना ही नहीं है कि जो अपराधी है, सभ्य नागरिक है, अपन बोलते ना तो इस ड्यूटी में शामिल नहीं है। अब आई समझ, ऐसे उस नए की ड्यूटी में ही नहीं है, नए वो कहता नए नहीं देख वस्तु में कुछ नहीं, वो कहता मिले ही नहीं है, ये तो भाषा है, माने मिले हैं तो मिलेपन को देखना मेरा काम नहीं है, मिले में भी वे अमिल मिलाप जो उनका स्वभाव है वो मेरा देखना है स्वभाव है, आप समझे ना ऐसी बात है।
पांच मिनट पहले अगर वो गाड़ी में
अमिल मिलाप नितम में जो रहे कान सुन, मिनाक्षी दास ने ऐसा लिखा है, दो द्रव्यों में अमिल मिलाप है, अमिल मिलाप है, मिलाप है लेकिन वे कभी मिले ही नहीं ऐसा मिलाप है,
बसंत क्रिया नहीं है
क्या। अब इसलिए आचार्य ने उस भाषा में लिख दी, किस भाषा में क्या, कि वो तो मिलते ही नहीं है, अब हम सारे देश में डंका चुटा लेंगे मिलते ही नहीं है मिलते ही नहीं है, फिर वो कहे मिले हैं, बोले आगे आएगा आगे ले चूना है ये हेल्दी है, अरे हमने मिला दिए, हम कह रहे नहीं मिले तो बता सबसे झूठ बोले क्या करोगे बोलिए, बोला समझ में आया आपकी नहीं आया, वो तो लागे हल्दी भी रखेगा चूना भी रखे और उन दोनों को मिलाएगा, क्योंकि आत्मा और कर्मों को पकड़ के लाख रखे तो वो मिला नहीं सकता, उदाहरण तो उन्होंने हल्दी और चूना का दिया है ना, तो वो तो उन्हें तो मिलाएगा, तो वास्तव में भाषा तो ऐसी है कि वो मिलते ही नहीं है, लेकिन उसने साथ में लगा ना इस नए से क्या, तो वो नए जो पदार्थ मिलते नहीं हैं उन्हें अमिल नहीं देखता है, जो वे मिल गए उस समय ही जो उनका नहीं मिलने का स्वभाव है वो उसे देखता है क्या, ऐसा है ऐसी भाषा, मैंने बोला ना कि आचार्यों ने भी लिखी है, जिनवाणी में भी मिल जाएगी, तुम दोष देते रहना जिसको देना है, यानी भाषा में भी लेखनी में भी बोली में भी आएगा, ख्याल नहीं ना समझे ना, लेकिन वो आएगा कि अपना त्रिकाली दुर्भगवात्मा सातवां द्रव्य है, क्यों दिल तो छह ही होते सातवां कहां से आ गया, जीव तो जीव में नहीं है, ये कह है तो सातवां क्यों कहा, अरे हमें उसे पृथकता बताने के लिए तुम्हें बताने के लिए बताया, अब तुम सांस में लेके परीक्षा करने बैठो, हमने हमारी अपेक्षा तो समझा नहीं, तो ऐसा कह सकते हैं क्या, ये कहा ही है ना, तो सातवां द्रव्य ने हम कोई आचार्य का प्रमाण आपको नहीं बता पाए, तो पंचम गति तो है ना, तो गतियां तो चाह रही है, फिर तो मोक्ष को पंचम गति कहा है कि नहीं कहा है बोलिए, आपका तो क्या है ही नहीं, गति गतियां तो चाह रही होती हैं, हम तो हूं पड़ा है पक्का है, गति मांगना हमने पूरी रटी रटाई है, उसमें कहीं है ही नहीं, यदि तुमने पंचम गति कहां से ले आई, तो मेरे कहने का मतलब ऐसी बातें आगम में भी मिल सकती हैं, प्राकृत में मिल सकती हैं, संस्कृत में मिल सकती हैं, हिंदी में मिल सकती हैं, विद्वानों के मुख से मिल सकती हैं, आचार्यों के मुख से मिल सकती हैं, तो इससे तुम्हें कोई गलत चीज समझ लोगे तो उसकी सजा तुम्हें ही मिलेगी, उन्हें किसी को मिलने वाली नहीं है, जिस अपेक्षा से उनने कहा है उसको समझना तुम्हारी स्वयं की ड्यूटी है। एक मैं आपको इसी से संदर्भ बात बताता हूं, आपको बहुत लोग सारे देश में ऐसे मिलेंगे जब तुम विद्वान बन के जाओगे, कैसा उस चंद्रमा और सूर्य जो फलाना और जे घूमती है, पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा घूमता है, चंद्रमा तक तो हो आ रहे हैं, तुम ये बोलते हो सुमेर पर्वत तो आज तक किसी ने कोई देखा ही नहीं है, कुछ बातें आएंगे ऐसा लगता है हमारा जैन धर्म तो झूठा है, कुछ भी आए सारे प्रश्न किए जाएंगे, मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं कि वो प्रश्न जो आपसे किए गए वो आप हमसे कर सकते हो, और हम जाकर के स्वामी जी से कर सकते थे, और जाके कोई समोषण में भी जाके भगवान से भी कर सकता है, उसे प्रश्न करने के वाले को तो रोक नहीं है ना, तो हम तो बीच के हैं कि हम किसी से प्रश्न भी कर सकते हैं और कोई हमसे भी कर सकता है, हम तो एक बीच की बहुत पैसी कड़ी है, है ना, हम तो अंतिम कड़ी तो है नहीं, ना इधर हो ना उधर, तो हम बहुत प्रेम से कहते हैं भैया तुम जैनी हो ना, यहां जैन धर्म की प्रति तुम्हारी पक्की श्रद्धा है क्या? अनुसार यदि तुम्हारी जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं है तो बात खत्म, फिर तुम जैन ही नहीं हो। जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं है तो जैन ही कैसे? अब हो तो भैया जितनी जिम्मेवारी ये हमारी है उतनी ही तुम्हारी है कि तुम दोनों जवाब हमें सुमेर पर्वत तो मिलता नहीं है, चलो खोजते हैं और वहां तो मिल गया उनका, तो चंद्रमा मिल गया, पहुंच गया। क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि तुम जिम्मेवार नागरिक हो भारत के, तो जो कह रहे हैं जितनी तुम्हारी कलमाड़ी की जिम्मेवारी है दिल्ली की गड़बड़ी की, उतनी जिम्मेवारी हमारी भी है। क्योंकि हम जब प्लेन में बैठे होंगे अमेरिका जा रहे होंगे तो विदेशी लोग हमसे कहेंगे तुम्हारे भारत में, तो कलमाड़ी मलमाड़ी को नहीं जानते हैं तो हमसे पूछेंगे और उसका जवाब हम गए हाँ हम तो ऐसे ही बेईमान हैं, हम तो खूब घूस खाते हैं, ऐसे दोगे? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी यदि श्रद्धा जैन दर्शन में है, यदि आप अंदर से फीलिंग करते हो तो उतनी पूरी जिम्मेवारी आपकी ही है अपने आत्मा के कल्याण की। और जिस मार्ग से कल्याण होना है उस कल्याण की वो मार्ग सच्चा है, इस बात की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि भैया तुम हमसे जो प्रश्न करो एक गला पकड़ू नीति नहीं अपनाओ, उस जिम्मेवारी से अपनाओ। क्या मान लो हम नहीं दे पाए जवाब तो इससे तुम्हारा हल थोड़ी हो गया, हमें कुछ नहीं आता ये सिद्ध करना तुम्हारा हल है कि जैन दर्शन सही है, ये सिद्ध करना तुम्हारी समस्या का समाधान है। हमें निरुत्तर करना तुम्हारा मतलब है कि बस तू अलू ठीक है तो आप बताओ, हम नहीं बताए तो आप कह दो झूठा है जैन धर्म, तो जाओ तुम जैन धर्म झूठा है, तुम्हारे लिए जैन धर्म की श्रद्धा वाले तुम नहीं हो। और अभी हमारा उसमें भरोसा है क्यों? तो देखेंगे कहते साहब तो जवाब तो है नहीं, तो भरोसा कैसे है? रहता है ना, जब तक सारे प्रश्नों के जवाब तो केवल ज्ञान हो जाएगा तब मिलेंगे, समोसरण में भी नहीं मिलेंगे, भगवान भी नहीं दे पाएंगे। क्या जब तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी तेरा समाधान होगा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जैसा है वो तेरे को दिख जाएगा। किसान नरकों में इतनी गर्मी क्यों है, वो तो अच्छी बात नहीं है और ऐसा नहीं है और जाने क्या क्या है, वो खैर गर्मी है तो गर्मी ही रहती, फिर बाकी के भी ठंडक है। अभी कोई बात है किसी तीन नरकों में गर्मी और बाकी के चार नरकों में ठंडक, और गर्मी भी तो ऐसी कि पांच लोहे का गोला गल जाए और ठंडक भी ऐसी कि छार छार हो जाए, और हम क्या करें? तो अभी क्या करें, सब सब में ठंडक कर देते हैं क्या कि सब में हमारी थोड़ी, हमको तो जानना है हम क्या करने वाले हैं उसके है? हमारे हाथ में क्या है, हम तो इसके कर्ता धरता है ही नहीं, जो है वो बताया गया है। क्या नहीं नहीं अभी कोई जवाब नहीं हुआ तो मैं पूछता हूं कि मद्रास में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है और कुल्लू मनाली में गर्मी क्यों नहीं है, शिमला में गर्मी क्यों नहीं है? अब दो हमें जवाब, हमें क्या कहें, क्यों का क्या सवाल है? क्यों का कहीं वो प्रश्न ही नहीं होता, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा है, हमें वैसा जानना है, इस मामले में क्या है ये पूछो, ऐसा क्यों है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे समंत भद्र ने जो तर्क के श्रोमणि आचार्य माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ, यदि कोई आचार्य है तर्क में तो आचार्य समंत भद्र, साहब ने उनकी ग्रंथों पर ही टीकाएं लिख लिख के न्यायशास्त्र लिखा है, न्यायशास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। और उन्होंने मालूम क्या लिखा है, स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव तर्क से अगोचर है, वो तर्क स्वभाव में तर्क नहीं होता। अग्नि गर्म क्यों है इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलता, ये तो जानने की चीज है कि कैसी है, ये जानी जा सकती है बताई जा सकती है, इसमें ऐसा क्यों का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि स्वभाव में क्यों का प्रश्न खड़ा नहीं होता, ऐसा समंत भद्र ने लिखा। मैंने सबसे बड़ा तर्कबाज भी ये कहता है, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھیری میا تاڑتا, میں نے سارے دیش میں ڈنکا کی بھیری بجائی تھی جینی اور رجینیوں سے, کہ عادت ہے جس کی طاقت ہو میرے سے وہ بات بات کرے. اور جب ایسا سامنے والا اڑ جاتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیوں, آپ تو کہہ رہے کہ ترک میں وہ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ اڑ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جینی ہے کہ اجینی ہے, کہ وہ اجینی ہے. سننا تو اس کے دھرم میں جو کون سے دھرم کا ماننے والا ہے وہ پوچھو. اس کے دھرم میں ایسی چیزیں بہت ہوں گی جیسا ہم جواب نہیں دے سکتے, جیسا بھی جواب نہیں دے سکتے, اور اس سے بھی زیادہ گجب کی ہوں گی, جنہیں سیتامبر تو اچھیرا کہہ کے نپٹاتے ہیں. کیوں, دھرم پریکشا میں کیا کیا ہے؟ یہی تو بتایا ہے کہ ان کو بے چیزیں سامنے رکھ رکھ کر کے یہ بتانا پڑتا ہے. دیکھو بہت ہر چیز میں ذرا تھوڑا دھیان سے دیکھو, سب جگہ سب ملے گا. وہ سروگ پہلے سے پوچھتا ہوں, یہ جو کہہ رہا ہے راہل گاندھی کہ سمی اور آر ایس ایس دونوں برابر ہیں, تو یہ بات صحیح ہے کہ غلط؟ کیوں کہنے کے ساتھ دونوں کی تلنا نہیں کی جا سکتی؟ آپ نے سب اخباروں میں پڑھا بھارتیہ جنتا پارٹی نے بہت ورودھ کیا, سمجھنا. اب کچھ گائے کی ووٹ میں پہاڑ ہے, معلوم اس نے کیا کہا کہ دونوں ہی کمیونل ہیں, دونوں ہی ایکسٹریم ہیں. یہ نہیں کہا کہ دونوں وہاں کے آتنکوادی ہیں. آپ کیا سن رہے ہیں نا, کیا کہا؟ دونوں ایکسٹریم ہیں, دونوں اپنے مطلب سمپلا, یعنی وہ ہندو کی دشٹی سے سوچتا ہے, وہ مسلمان کی دشٹی سے سوچتا ہے, وہ بھارت کی دشٹی سے نہیں سوچتے ہیں. آپ سمجھیں یہ بات کہاں اس میں غلطی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہاں وہ کہتا سمی والے تو پکڑے گئے آتنک واد میں سے, بھی آتنک وادی ہیں. آر ایس ایس والے بھی پکڑے نہیں گئے ہیں, جب پکڑے جائیں گے تب آتنک وادی کہلائیں گے, تب تک نہیں کہہ سکتے ہیں. جو آتنک وادی کہا ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں. ارے اپن نہیں کہتے ہیں کہ ایک ویوہار کی اتی والا ہے, ایک نشچے کی اتی والا ہے, ایکسٹریم والے ہیں. کیوں تو ایکسٹریم والے نہیں ہیں کیا بیبی کہ میرے کہنے اس کو آتنک وادی کے روپ میں ایک ورودھ کیا جا رہا ہے, اتنی سی بات ہے. اب وہ تم خوب خوب اخبار لکھ دو لکھ دو تو ایک جواب دے گا, یعنی اس میں اتنی عقل ہوگی, یعنی اس کے نہیں ہوگی تو اس کے پاس میرے جیسا کوئی آدمی ہوگا کیا؟ تو کہ تو میں تو صرف دونوں اتیوادی ہیں کیا کیا, ہم نے بھارت دیش میں رہتے ایک ساتھ ہمیں رہنا ہے کیا؟ تو ہم ایک کی بات نہیں کر سکتے, کم سے کم پالیٹکس میں جو سب کے دیش کے دیش سب کا ہے اور سب کے حساب سے ہمارے دیش کا شاسن چلنا ہے تو ہم ایک کی بات نہیں کر سکتے. باقی تو ہم اپنے اکیلے کی تو ہم بات کر ہی سکتے ہیں نا. آپ کو ہندو دھرم اچھا لگتا ہے تو کریے نا خوب پرچار اس کا, مسلم اچھا لگتا ہے مسلمان کا خوب پرچار کریں, کون روکتا ہے؟ ہمیں جین دھرم اچھا لگتا ہے تو ہم جین دھرم کا پرچار کریں. کیوں, ہمیں سدھارتھ ماں کی بات اچھی لگتی تو ہم اس کا پرچار کریں. یہ تو فلسفی ہے, یہ تو وہی گورنمنٹ یونیورسٹی میں کورس میں رکھتی ہے سب. کیا اس میں نہیں ہے وہ دوست؟ لیکن وہ آپ سمجھے درشٹی کون میں کتنا سا ہے. ایسے ہی نیوں میں باریکی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ نرنتر جاگرت رہنے کی چیز ہے اور نیوں کے والے پرکرن کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنے آپ اس میں ماہر ہوں گے گھر میں ہے نا تو ہی آپ کو ستیہ میں رہیں گے, نہیں تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں مس گائڈ ہو جائیں گے. ایک بات اور کہوں, میں نے بی اے میں فلسفی لی تھی تو فلسفی میں ایک پیپر آتا تھا لوجک کا, ترک شاستر کا, تو اس میں ایک بہت مارمک پرشن تھا, شروع شروع میں ہی لکھا جائے کہ بھئی ترک شاستر پڑھنے سے فائدہ کیا ہے. कहते हैं प्रश्न कि इसका लाभ क्या है, ये प्रश्न था क्या कि तर्कशास्त्र पढ़ने के से लाभ क्या है, तो उसने जवाब दिया था कि तर्क संबंधी जो अज्ञान है उसका नाश क्या तो क्या कोई तर्कशास्त्र पढ़ के अच्छा तर्कशास्त्री बन सकता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तर्कशास्त्र पढ़ने का फल तो तर्क संबंधी अज्ञान का नाश है, किसी को तर्कशास्त्री बनाना नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि कोई राजनीति में एमए पीएचडी करके अच्छा नेता बन सकता है, और राजनीति नहीं पढ़े वो नेता नहीं बन सकता है। राजनीति में एमए करना जरूरी है नेता बनने के लिए, तो जैसे राजनीति शास्त्र पढ़ने का फल राजनीति संबंधी अज्ञान का अभाव है, नेता बनना नहीं है। कानून पढ़ने का फल कानून संबंधी अज्ञान का अभाव है, वकील बनना नहीं है, जज बनना नहीं है। समझ में आए ना कि हर ज्ञान के क्षेत्र में के अध्ययन का लाभ तत्संबंधी अज्ञान का अभाव है, एक फल। और दूसरा फल क्या है कि आप बढ़िया तर्क कर पाए चाहे ना कर पाए, सुनना बहुत मार्मिक है, लेकिन कोई गलत तर्क करके तुम्हारे गले गलत चीज उतारे ये नहीं उतार पाएगा। क्या किसी के तर्क शास्त्र पढ़े होगे तो गलत तर्क के आधार पर मैं तुमको मिसगाइड नहीं कर सकता। ये फल है कि तुम राजनीति पढ़े होगे, भारत संविधान पढ़े होगे गहराई से, तो संविधान में जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनका लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा, वो अन्याय आपके साथ नहीं हो पाएगा। ख्याल में है ना, महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं यदि वो उनने पढ़ लिया तो वो जाकर के सबको नेता बन जाएंगी कि नहीं, लेकिन महिलाओं के साथ जो अन्याय होते हैं उनकी नासमझी के कारण वो अन्याय उनके साथ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बात मेरे इसके विरुद्ध है। आप समझिए ऐसा है तो ए और अपने यहां क्या लिखा, देखिए मैं पूछता हूं अपने यहां क्या लिखा बोलो, तो परीक्षा मुख सूत्र तो सबने पढ़ा है, अज्ञान नाशो उपेक्षा वा, यही लिखा ना, प्रमाण का फल क्या है, अज्ञान की निवृत्ति करो जो नाश करो और उपेक्षा। वो कहते हैं कभी हमारे यहां तो प्रमाण अज्ञान का नाश हो जाएगा, तो तुमको वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है तो उसे तुम्हें कोई गलत रास्ते पर नहीं डाल पाएगा, तुम लोगों को गलत रास्ते पर डालो ये तो तुम मांग ही नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत बढ़िया तर्कबाज बन जाओगे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है, एजुकेशन से ऐसा नहीं होता है। तो कहना क्या चाहते हो कि वेद तो सब ओरिजिनल होते हैं, काव्य शास्त्र पढ़ करके कोई कभी बना है आज तक, क्यों यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये पी अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदश आर्या, ये आर्या छंद की परिभाषा है कि जिसमें पहले पद में 12 मात्रा हूं, दूसरे पद में 18 मात्रा हूं, तीसरे पद में 12 मात्रा हूं, चौथे पद में 15 मात्रा हूं। अब ऐसी मात्राएं गिन गिन के आज तक किसी ने आर्या छंद लिखा है, लिख सकता है क्यों बोलो, तो एक छंद शास्त्र का ज्ञान करके जैसे कोई छंद नहीं लिख सकता, लेकिन छंदों को समझ सकता है कि ये छंद सही है कि गलत है, कि आप समझिए ना, छंद संबंधी अज्ञान का नाश हो सकता है, क्योंकि कोई कविता का पढ़ करके कभी नहीं बन सकता, तो कैसे बनता है कि कभी ओरिजिनल होते हैं, ऐसा ही विद्वत्ता है, ऐसा ही वक्ता है, सब कलाओं का ऐसा ही है कि उसका अध्ययन इसलिए जरूरी है कि तत्संबंधी अज्ञान का नाश हो जाए, ख्याल में आई ना, लेकिन वो बनने का उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये मांग करना, नहीं तो इतने नेता हैं राजनीति में जितने पढ़ते वे सब नेता हो जाते, लेकिन उनमें सभी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वे भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं, आप समझे ना, उन्हें अदालत में खड़ा कर दो तो एक मुकदमा तुम्हारा नहीं बिता सकता, कौन जो एम एल एल एम को पढ़ाते हैं, एल एल एम समझ गया ना, एल एल बी इसके बाद में मास्टर की होती एल एल एम, और कानून में जिन्होंने सैकड़ों को पीएचडी करा दी, डीलिट करा दी, ख्याल में आई ना, वे अदालत में खड़े होकर के एक छोटा सा मुकदमा नहीं लड़ सकते। इसलिए कहते हैं ना पहले दो साल की किसी बड़े वकील के पास बैठ के प्रैक्टिस करो। डॉक्टरी पढ़ पढ़ के कोई डॉक्टरी नहीं कर सकता है, इसलिए दो साल की इंटरनेट से पहले जो डॉक्टरी कर रहा है पहले उसके पास बैठ के डॉक्टरी करो। ये डॉक्टरी की पढ़ाई से डॉक्टर नहीं बन पाओगे, आप समझे ना, ऐसा है। तो ऐसे ही ये नयों को समझना, समय सार को की गहराई से समझना, ये अपने लाभ के लिए है कि हम कोई मिसगाइड ना हो जाएं। हमारे सामने कोई जर्मनी में ऐसा वाक्य आए, कोई विद्वान बोले, तो हम अपने खाते में खटा लें। अब कुछ लोग अपने अज्ञान को छिपाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, अब हमारी अपेक्षा से खटा लो, हमने कुछ भी कहा क्या। तो उसके लिए जो मैंने वो उदाहरण दिए, आज सुबह भी आया था और कई जगह देता हूं कि साहब झूठ बोलना भी ठीक है, किससे, क्योंकि वो गाय बच जाए, इसलिए झूठ बोलना ठीक है, और किसी भी बेस्या सेवन कर लेना भी ठीक है, नहीं तो वो बेस्या आत्महत्या कर लेगी, करना ही ना, और चोरी करना भी ठीक है, क्योंकि वो बेस्या ने कहा था इससे अंजन चोर से कि तू ला, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, इसलिए बेचारा राजा का रानी का हार चुरा के लाया था, क्यों। तो कोई ना कोई धमकी किसी भी न किसी पाप करने के लिए हमको दे देगा, क्यों, सब पाप ठीक करना जरूरी हो जाएगा बस, क्यों। तो ऐसा खोटा तर्क दे करके वो हमें उलझाना ले, यानी जो परिस्थिति सिर्फ तेरी कल्पना लोक में खड़ी हुई है, अरबों लोगों में देखने में नहीं आती है। आज तक एक कसाई ने एक भी साधु से ये नहीं पूछा होगा कि ये गाय किधर को गई, क्या, और उसके आधार पर तुम लोगों को झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्या झूठ बोलने का एक रास्ता खोल गया। आप समझ रहे, अब जिसने खोला होगा, लेकिन हमने सोच तो सकते हैं ना, हम उस बात को साधुओं के सामने रख तो सकते हैं ना, ये कोई तर्क हुआ, यानी कोई भी आदमी कोई भी तर्क देके कि मैं अपने हत्या कर लूंगा कि मैं हत्या कर दूंगा, हमें कोई भी पाप करने के लिए बाध्य कर सकता है, और उस पाप के जिम्मेवार हम नहीं होंगे, ये बहाना है, बिल्कुल कुछ नहीं। वो गांधी जी का उदाहरण ही सही है, तो मालूम वो श्रीमद रायचंद ने जो जवाब दिया था ना, वो और कोई पूछने वाला और कोई नहीं था, साधारण आदमी महात्मा गांधी थे, क्या बन गए थे लोग, श्रीमद रायचंद के प्रेरणा से वे अहिंसावादी बने थे, और सारा देश उनके ऊपर ये कहता था कि भाई वो तो ठीक है, आपने अहिंसा का जो रास्ता अपनाया, भारत आजाद हो गया, अब वो पाकिस्तान के साथ कोई नीति नहीं अपनाई जा सकती, क्या साहब, अब ये नहीं किया जा सकता है, हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हमें तो उस पर आक्रमण करना ही पड़ेगा, यदि वो हम पे बम पटकेगा तो हम तो उस पर बम पटकना ही पड़ेगा। तो वे कोई जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो तो मालूम आपको कौन से थे, गांधी जी, समझ में नहीं आया, तीन डंडा वाले थे, तीन नेहरू जी वगैरह सब एक डंडा वाले थे, सही डिवीजन पास हुए थे, और ये सब टॉपर्स थे। तो वो उन श्रीमद के पास गए, ऐसा नहीं कि भाई वैसे उन्हें प्रश्न कर दिया, भाई हम कुछ प्रश्न करने को कि भाई मुझे इसका समाधान दो, किस बात का समाधान दो। तो उन्होंने फिर ये खड़ा किया कि एक आदमी आने से बंदूक लेके मेरी छाती पे खड़ा है, और मेरे पास भी बंदूक है, अब है वाला चाहिए ना, हमारे पास भी अनुगम है ना, उदाहरण तो एक सा बनाना पड़ेगा क्या नहीं। अब दोनों आमने सामने ऐसी बंदूक लाने खड़े हैं, एक सेकंड पहले जिसने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे मारना है तो वो मार देगा और सामने वाला मर जाएगा, यानी इस सोचने का ज्यादा समय नहीं है, आप समझिए ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ये अनुभव मैं पहले पाकिस्तान में फटक दूंगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, अब मैं जीत जाऊंगा पाकिस्तान भी अपने कब्जे में हो जाएगा, सारी जमीन अपने पास आ जाएगी, और उसने पटक दिया तो सारा देश पाकिस्तान हो जाएगा। अब बोलो क्या करना, अब बोलो श्रीमत तुम क्या करना, अब समझे ना। इसको बोलते हैं उभय तो पास, दोनों तरफ से फंसाना। और जवाब क्या है कि हाँ तुम मार दो, यही बढ़िया है, क्योंकि हिंदुस्तान खत्म हो जाए इसको कौन मानेगा, कह दोगे तो एक मिनट में लोग तुम्हारी हत्या कर देंगे, ऐसे आदमी को विचारधारा वाले को हमको हिंदुस्तान में रहने ही नहीं देना है, समझ गए ना। माने सीधे सच्चे अर्थों में यही कहलवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल चुप रहे, बोले ही नहीं। जो मैंने कहा तीसरा रास्ता भी है चुप रहने का, जब बहुत पीछे पढ़े तो श्रीमद ने क्या जवाब दिया वो बहुत समझने लायक है, अंदर से विचार करने लायक है। श्रीमद इस मामले में बहुत बुद्धिमान आदमी थे, वो प्रतिभा संपन्न थे, विशेषज्ञ थे कि नहीं थे इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो उनके साहित्य में सारा जनागम नहीं है। आप मेरा सारा जनागम उन्होंने पढ़ लिया हो और उसे पूरा जैन दर्शन वो प्रस्तुत किया हो ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो प्रतिभाशाली बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि तुम उसे मार दो, गोली चला दो, ऐसा कहकर मैं तुम्हारे भविष्य के अनंत भव नहीं बिगाड़ना चाहता, और तुम्हारे साथ मेरे भी क्या माने, इस बहाने तुम उसकी हत्या करोगे तो ये अब साधारण आदमी हो ना, दो अपन आप आमने सामने अपन है मतलब हिंदुस्तान में, तो दूसरे को फांसी लगेगी ना, तो बचेगा तो कोई नहीं दोनों में से, दोनों में से एक ने दूसरे को मार दिया सुनना, तो बचेगा तो कोई नहीं, क्योंकि एक मरेगा गोली से और दूसरा चढ़ेगा फांसी पर। देखो गांधी जी मरे गोली से और वो गोर से चढ़ा फांसी पर, ठीक है ना। अब तुम कह रहे पहले मर जा, तुम्हें लगता है वो बच जाए, बच गया क्या, जो मारेगा पहले वो नरक निगोद में जाएगा और आनंद भव बिगड़ेंगे उसके, फिर न मालूम किस गति में गया हूं, ऐसे संयोग भी नहीं मिले जो हिंसा की उसे पुष्टि मिले कि उन्हें मर गया तो साहब, तो मर गया तो क्या है, असली जिंदगी तो तुमने बेटा भोग ली है, अब ये बुढ़ापे के दिन बचे हैं खास खास कर जीने के, चले जाएंगे तो चले जाएंगे। मान लो जब उस वक्त गांधी जी कितनी 80 वर्ष में 75 वर्ष में मरे हैं, 10-15 साल पहले की बात होगी क्या, सोचो अपने अपन सोचो ना, क्या नाम पुरुषोत्तम बाबू, अब अपने तो ब्याज का काम है ना, हो जाए तो हो जाए खत्म, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम करके अगला भव क्यों बिगाड़े। एक सच्ची घटना बताता हूँ, मेरे स्कूल की मैं पढ़ाता था ना इंदौर में त्रिलोकचंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल में बहुत समाज में, तो एक लड़के ने टेबल पर ऐसा छुरा भोंप कर ऐसा रखा था और नकल कर रहा था, और सब लोग अध्यापक एक जोशी जी अध्यापक थे, वो लंगड़े लंगड़े से थे, बुजुर्ग थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे हमारे साथ, हम तो छोटी उम्र के थे, यहां आए उसके पहले की बात है ना, हम तो 27-28 वर्ष के होंगे, 30 वर्ष के होंगे, और वो थे कम से कम 60-65 वर्ष के, और उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, बस पति पत्नी थे, लंगड़े थे और अपने अच्छे अध्यापक थे। तो सब ने कहा कि अभी अब जोशी ऐसा है ऐसा ऐसा, सारे जितने अध्यापक थे ना ड्यूटी 10 कमरों के, तो सब में वो बात फैल गई कि ऐसा हो रहा है, और उसमें जोशी जी की ड्यूटी थी, तो सब लोग इकट्ठे हुए कि नहीं जोशी मैं उसको टोकूंगा, मैं उसे नकल नहीं करने दूंगा, मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करना। सबने कहा जोशी जी का ये सारे गुंडे हैं बदमाश हैं, एक निकल जाएगा तो क्या फर्क है, तो वैसे ही निकलने वाले हैं। फेल हो जाएंगे तो नेता बनना है, पास हो जाएंगे तो नेता बनना है, आप क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हो? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। हम वो गए, हमारी आंखों के सामने की घटना बता रहा हूं मैं। जोशी जी गए और बोले, देख बेटा, मैं तेरे को नकल नहीं करने दूंगा, या तो तू नकल बंद कर और नहीं तर मैं तेरे को कॉपी पे नोट लगा करके बोर्ड को भेज दूंगा। अभी मैं छीनूंगा, तू नहीं देगा तो बाद में तो मेरे पास आएगी ना, तो मैं बोर्ड लगा करके। बोले, दिख नहीं रहा है? ना दिख रहा है ना? देख बेटा, यदि हमारी तेरी लड़ाई हुई तो दो में से एक नतीजा होगा कि तू मुझे मार देगा या मैं तुझे मार दूंगा। ये समझना कि क्या बात कर, तू मुझे मार दोगे? कहने में 1% वैसे तू मुझे ही मारेगा, लेकिन तू मुझे मारेगा तो फांसी पर चलेगा, ये पक्का। इतने गवाह हैं, इतना वो है, ऐसा नहीं चल पाएगा, तू फांसी पर चलेगा। तू मुझे मारेगा तो फांसी पर चलेगा, और मैं तुझे मारूंगा तो तू मर ही जाएगा, और मैं तो आत्मरक्षा में, मैं फांसी पर नहीं चढ़ूंगा। क्यों? और मैंने तो सारी जिंदगी जी ली है, अगली साल रिटायर्ड होने वाला हूं, अब तो मेरी ये सड़ी सड़ाई जिंदगी है, मेरा कोई कहीं आगे पीछे फिक्र मत कर, लेकिन मैं तुझे नकल नहीं करने दूंगा। क्या साहब? कुछ नहीं, सारे कागज दे दिए तो कुछ नहीं किया, समझ में आ गई उसकी उसकी समझ में ये बात आ गई क्या? तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़े लेवल की ही बात है, ऐसे झूठे तर्क दे देकर हम अनुबम भी फेंकने का अधिकार लेना चाहते हैं। देखो कितने नालायक हैं, मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बहुत इस मामले में मेरा बहुत स्ट्रांग विचार है, वो तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। किसी भी कीमत पर अनुमम किसी पे नहीं डाला जाना चाहिए, हिंदुस्तान को नहीं डालना चाहिए कि भाई डाल के हमें मार। हाँ, उस कीमत ऐसा कहते हैं ना लोग, तो लोगों को बहुत वो लगता है, लेकिन नहीं, किसी भी कीमत पर। तो फिर क्या कहते, कश्मीर दे दें? तो फिर मेरे जो विचार हैं, ये लोगों के गल में पचना बहुत मुश्किल है कि दे के भी यदि अनुमम बांध डालने से बचते हो तो दे दो, घबराना नहीं। कि क्या कहता हूं, आप समझ रहे ना? ये कश्मीर बराबर कई प्रांत को तुम मार के खत्म करके अपने पास रख करके कौन सा मोक्ष में चले जाओगे? क्या करोगे? क्या उपलब्धि है? तुम किसी बहाने से हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। और ऐसा कह के वो तो जो होगा सो होगा, हमारे हाथ में है नहीं। सुनो, हम अनंत पाप बांध रहे हैं। जमन राजेंद्र मंसल है ना, ऐसा ऐसा कर देना चाहिए। ऐसा मैंने उन्हें समझाया कि देखो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो, ये विकल्प भी नहीं लाना, आक्रमण कर देना चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए, पाकिस्तान को मदद चखा देना चाहिए। वो कुछ नहीं, आपको मालूम है हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं, मरते हैं, साल में 10,000 लोग मर जाते हैं कश्मीर की बॉर्डर पर आतंकवादियों के, 10,000 मर जाते हैं ना, और अनुगम से कितने मरेंगे? ऐसे 10,000 100,000 बरस तक मरे तो भी अनुभव से कम मरेंगे। बोलो, खाते का सौदा है? मैं मरने की बात नहीं कहता हूं, समझना मेरा विचार क्या है। क्या कि झगड़ा है, इतना है, इतने लोग मर जाते हैं कश्मीर की बॉर्डर पर, ये आतंकवादियों ने इतने मार दिए, 5 आ गए, रोजाना अखबार में आता, 3 आ गए, 5 आ गए, 7 आ गए, दिनों साल भर के कितने आए, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। हो सकता है मेरे को जेल भी हो जाए, लेकिन मेरी बात सुनना, मैं क्या सोचता हूं, साल भर के लगाओ ना कितने मारे, क्यों? हजारों में निकलेंगे, लाखों नहीं निकलेंगे। तुझे ना अखबार में 3, 4, 5, 10, 11 लगाओ ना जोर, 10,000 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। और तुम इसकी वजह से कि पाकिस्तान के उन इलाकों में कि जहां पे कैंप चल रहे हैं बम भटक गए, क्या कह रहे हो? पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ी तुमने कि शेर सारी जिंदगी जिंदा रहेगा तो कितने जीवों को मार के नरक में को जाने की तैयारी करेगा, इसलिए उस शेर को मार देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब जितने जीवों को वो जिंदगी भर में खाएगा उतने शेर तुम मार दोगे, तो उसी न्याय से तुम्हें भी वही दंड मिलना चाहिए कि फिर तुम्हें मार देना चाहिए। तर्क समझ में आया कि नहीं? न्याय तो इतने जीवों को मारे उसको ये दंड, तो तुमने भी इतने जीवों इतने शेरों को मारा मारने वाले को, अरे उसकी जिम्मेवारी उसकी है। वो मुसलमानों क्या तर्क दिया? ये नहीं दिया कैसे कि वो शेर लोग मर जाएंगे, वो कहते हैं कि वो शेर को कितना ज्यादा पाप लगेगा इतने दिनों को मारेगा, तो मैंने उसे मार कर उसे पाप से बचा दिया, ऐसा तर्क दिया। ऐसा ही समझे ना, ऐसा नहीं भाई, किसी कीमत पर जैन दर्शन की अहिंसा गांधी जी की अहिंसा से बहुत ऊंची है। गांधी जी तो यही सोच रहे थे, श्रीमद से ऐसा जवाब मांगने गए थे और श्रीमद ने ऐसा जवाब दिया था, चल नहीं ना, तो अरहंत भगवान का क्या जवाब होगा, कुंड कुंड का क्या जवाब होगा, बोलो। किसी भी कीमत पर, किस विचार के लेवल पर, वाणी के लेवल, हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं करेगा वो संजय दत्त जैसा गांधीवादी, क्यों जी तुम्हें एक कोई चांटा मारेगा गाल पर तो तुम क्या करोगे कि दूसरा गाल कर दूंगा, कि वो दूसरे गाल पर मार देगा फिर क्या करोगे, ये तो कहीं दिखाई नहीं इसके बारे में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। गांधी जी ने तो इतना ही लिखा कि एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल कर देना चाहिए, फिर तो दूसरे पर मार दे तो फिर अब तीसरा गाल तो कहां से लाएंगे। माने इसके आगे हमारे पास जवाब नहीं है, आप ऐसे विद्वान नहीं होना चाहिए, आपको आपके पास उसका अंतिम तक जवाब होना चाहिए, आपका चिंतन अंतिम बिंदु तक जाना चाहिए। समझे ना, अभय क्या कह रहा हूं मैं, समझ गया ना? ये जोक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम इतने मूर्ख हैं कि हम एक एक चीज ऐसी देख देख के डिसीजन करेंगे। हमें भी दिमाग है ना, हमें भी बुद्धि है और विवेक है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एक पाप को सिर्फ दूसरा बड़ा पाप से जो छोटा पाप है इस बहाने किसी भी पाप का समर्थन इस जगत में नहीं किया जा सकता। अगली हिंसा की बात नहीं है, मैंने उदाहरण दिए ना सब कि वो गाय मर जाती इसलिए झूठ बोलने का हो गया, तो वो चोरी का भी उदाहरण दे दिया, क्या तभी उसका दिया था, चोरी का किसका दिया बोलो, अंजन चोर का, वेश्या ने कहा था ना कि चुरा के लाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तो चोरी पे चला गया वो। ऐसे हरेक का हर पाप का समझो, वो वेश्या ने कहा मैं मर जाऊंगा तो शेर जी वेश्यावृत्ति में लग गए उसे बचाने के लिए, क्यों? तो विचार हो गया, चोरी हो गई, झूठ हो गया, क्यों? हमने अहिंसा धर्म को महान धर्म कहा तो अहिंसा के नाम पर अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए हम झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब की हमने स्वीकृति ले ली, और जबकि प्रसाद द्वीपाय ने लिखा है कि ये पांचों हिंसा की ही पर्याय हैं, क्योंकि प्रमत्त योगार जो हिंसा की परिभाषा है वो इनमें भी नियम से प्रमाण का योग होता है। लिखा क्या नहीं लिखा? थोड़ी हिंसा से बड़ी हिंसा की तुलना कर करके क्या बड़ी हिंसा से बचने के लिए छोटी हिंसा कर देना चाहिए क्या? कि क्या हिंसा हिंसा होती है, इसमें छोटे बड़े का क्या होता है? ज्यादा जहर खाने से बच जाए तो छोटा जहर खा लेना चाहिए क्यों? लेकिन दोनों का फल तो क्या है, मरना ही है ना। क्यों, तुम ज्यादा जहर खा के मरो या कम जहर खा के मरो, बचने का तो कोई रास्ता नहीं है ना। इसे बहुत विवेक से तत्व ज्ञान का निर्णय करना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे के माथे पर जिम्मेवारी डालकर हम उस जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। क्या, क्यों कि दूसरे ने नहीं बताया, कि हमको ये नहीं कहा, कि हमको ये समझाया गया था, तो समझे तो तुमने था ना, फिर तुम्हारे पास दिमाग काय के लिए है, इसी के लिए है ना। हमारे कुंद कुछ ने तो डंके की तोड़ कह दिया कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, तू अनुभव से प्रमाण कर बेटा, देख लेना आत्मा को, तब मानना जो मैंने बताया कि ऐसा है। बिना देखे मान लेगा तो हम तो तुझे पहली क्लास माने चौथे गुणस्थान में नहीं मानेंगे, माने पहली क्लास में से ही नहीं निकलने देंगे हमारे मान्यता के हिसाब से। क्यों, आत्मानुभूति पूर्वक ही जीव को सम्यक मार्ग मिलेगा, अकेले कहने मात्र से नहीं मिलेगा। सत्य भी टोडामल जी ने लिखा ना मोक्ष मात्र का, सत्य भी हमारे कुल में हमारे महाभाग से सत्य धर्म है, लेकिन यदि उसे कुल की वजह से माना और परीक्षा करके नहीं माना तो वो कुल धर्म होगा, जैन धर्म नहीं होगा। क्यों, समझ में आया ना आपकी मैं कहा, ये विवेक का जैन धर्म है, जैन धर्म विवेक का धर्म है। हो गया।